آیا کے آنے کے विशेष यही दरवाजे हैं। कौन से दरवाजे हैं? विपरीत भावनाएं कल्याण की नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो माया के आने के ये दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। भावना पहले संकल्प रूप में आते हैं, फिर बोल में आती है, और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसे भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हरेक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल में मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा। अगर किसी आत्मा के प्रति अपनेपन का भाव नहीं है तो क्या हो जाएगा? भाव में परिवर्तन होगा, हर चलन हर बोल में मिसअंडरस्टैंडिंग। वो जो भी बोल रहा है हमको कुछ और ही लगेगा, और जो अपने जिनको हम समझते हैं वो अगर गलत भी कुछ बोलते हैं तो हम उसको विपरीत उल्टे रीति से लेते हैं। तो हर चीज का आधार हमारी भावना और भाव है। चेक करना है कि अपने अंदर शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक कितना है। ये देखा गया है कि दिन भर में ये स्टॉक बहुत बार कम हो जाता है। ऐसी ऐसी आत्माएं हमारे सामने आ जाती है कि उनके लिए फिर शुभ भावना रखना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना रखना कठिन हो जाता है। सबको हम अपना नहीं समझ पाते। हमारे मन में बहुत सारे भेदभाव भरे हैं। कल हमने कुछ भेदभाव देखे थे। सबके लिए समान भाव नहीं है हमारे मन में। हमारे मन में बहुत सारी भावना है, ये ज्ञानी ये अज्ञानी, ये ब्राह्मण ये अब्राह्मण गैर ब्राह्मण शूद्र, ये समर्पित ये गैर समर्पित, ये सेवाधारी, ये पुराना ये नया, ये अमृत वेला करता है ये नहीं करता, ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी है ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं है, ये मुरली सुनता है ये मुरली नहीं सुनता है। हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं पर ये नहीं करते। हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है पर दूसरे नहीं करते, और जो नहीं करते उनके प्रति सूक्ष्म घृणा है हमारे मन में। ज्ञान योग तो कुछ नहीं, चले आगे आगे करने। एक है उसको जानना, दूसरा है अपने मौन को शब्द देना, मुखरित करना, उसकी आवश्यकता नहीं है। पता है बस, ठीक है, उसको अंदर ही रखो। हमारी भावनाएं चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे पुरुषार्थ कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, चाहे ब्राह्मण है चाहे नहीं है, चाहे यहां रहने वाला है या बाहर रहने वाला है, हमारी भावनाएं परिवर्तन हो जाती है। ये हमारे गांव का है, ये हमारे गांव का नहीं है, ये हमारे सेंटर से है, ये हमारे सेंटर का नहीं है, ये हमारे सेंटर के कनेक्शन के सेंटर का है, ये नहीं है। हमारे मन में बहुत सारे भेद है, बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे निगेटिव संकल्प है, विकल्प है, और ये ऐसी भावना है जो कि जहर की तरह हमने अंदर रखी है। तहखाना है अंदर एक, उसमें भरी है, जो भी आते जाता है उसमें हम डालते जाते हैं, इस तरह की निगेटिव भावना है, और वो वहां पड़ी हुई है। घाव है एक हमारे अंदर, घाव, उसमें मवाद भरा है, उसमें से ये सब निकलते रहता है। अदृश्यमान है ये, आंखों से कुछ नहीं दिखता है, और जैसे हमारी भावनाएं वैसे ही हमारे गोल, जैसे वैसे ही भाव, वैसे ही बोल, वैसे ही चलन। कुछ आत्माएं ऐसी है कि हमको न जाने कोई कारण नहीं है पर अच्छी नहीं लगती है। हमने देखा है ये तो कुछ करती नहीं है, बस आगे आगे करती है। ऐसी आत्माओं के लिए हमारे मन में सम्मान थोड़ा कम है। ऐसी कुछ आत्माओं की आदत है कि एक नियम है, आचार संहिता में लिखा हुआ है कि अगर कोई योग कर रहा है या कोई मुरली सुन रहा है तो उसे उससे उठाना नहीं चाहिए। टीचर बहनों के लिए नियम है ये आचार संहिता में कि अगर कोई स्टूडेंट योग में बैठा है तो जब तक कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है उसे उठाना नहीं चाहिए। यदि कोई योग कर रहा है उसे जब तक महत्वपूर्ण कोई कारण नहीं है उठाना नहीं चाहिए। अगर कोई हमको बार बार उठाता है तो उसके प्रति घृणा तो नहीं, सम्मान कम हो जाता है। उसमें फिर और दो बातें, एक तो कभी हम इंचार्ज है और कभी हम छोटे हैं, कभी जूनियर कभी सीनियर। अगर छोटे हैं तो और बिना कारण के हमको बुला रहे हैं, ना समझ से है ना, हाँ कोई कारण नहीं है ऐसे ही, तो वहां पे अगर कोई छोटा है तो फिर अंदर में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, उसके विरुद्ध में कुछ कर नहीं सकते। पर हम क्या सोचते हैं फिर, ना तो खुद ज्ञान योग करते हैं ना हमको करने देते हैं। इस तरह की निगेटिव भावनाएं हमारे मन में आती है। और कोई इंचार्ज होगा तो क्रोध, जितने जूनियर्स है जितने जिन्होंने उसको बुलाया उसके प्रति क्रोध। अगर क्रोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है तो अंदर रहेगा। तो बाबा ने कहा अपनी सूक्ष्म भावनाओं को चेक करो, हमारी भावनाएं शुभ हो, कल्याणकारी हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, अपनेपन की भावना हो, सब हमारे है। ब्राह्मण है या नहीं है, पुराना है, मधुबन निवासी है, सेंटर निवासी है, सेवाधारी है, कोई छोटा है या बड़ा है, कठिन काम है, मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। हाँ, हमारे अंदर में इस तरह का मतभेद ना हो। कोई छोटा है जैसे कोई सेंटर है और जिसपे कोई एक कन्या आ गई है, एकदम नई कन्या 15 साल 20 साल, अभी क्या आपको पता है ये कौन आई है, हमारा उसके प्रति कौन सा, वो उसको ज्यादा ज्ञान पता नहीं पर उसके प्रति भावनाएं कौन सी हो हमारी, अभी न जाने न मालूम ये आत्मा कौन सी आत्मा आई है, कितने जन्म महान तपस्या कर यहाँ आई है, भक्ति मार्ग में न जाने इसने क्या क्या महान कार्य कर दिए होंगे, या पता नहीं शायद इसी ब्राह्मण परिवार से निकल कर इधर आई है, उसकी न जाने कितनी तपस्या है, भले उसको अभी ज्ञान पता नहीं, हम उसको ज्ञान देने के निमित्त है या कोई और है, पर वो नहीं है तो उसके प्रति भी हमारी, चाहे कोई नया हो चाहे पुराना हो, हमारी उनके प्रति भावनाएं श्रेष्ठ ही होनी चाहिए। क्योंकि हमको पता ही नहीं वो क्या क्या करके आई है, ऐसी महान तपस्या करके आई, न जाने कितने जन्मों से वो आत्मा पवित्र होगी, उसे तो अपवित्रता का पता ही नहीं, कुछ ऐसी भी आत्मा हो सकती है, न जाने कितने जन्म सन्यासी होगी, न जाने कितने जन्म उन विकारों के प्रति उसके मन में कुछ उसे पता ही नहीं विकार क्या होते, ऐसी भी आत्मा हो सकती। तो चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे कोई ज्ञान में नया हो या पुराना, समर्पित गैर समर्पित असमर्पित, ब्राह्मण अब्राह्मण, सेवाधारी सेंटर निवासी मधुबन निवासी, कोई भी, या अज्ञानी, संपूर्ण अज्ञानी, संपूर्ण अज्ञानी अर्थात हम जिसको अज्ञानी समझते हैं, उसको समझना, उसके प्रति श्रेष्ठ भावना रखना, पर उसे बोलने की जरूरत नहीं कि ये अज्ञानी है ये बीके है, इस तरह बोलने की जरूरत नहीं। तभी होगा अपनेपन की भावना, सबके प्रति अपनेपन की भावना, सब हमारे हैं, सब, चाहे वो कुछ भी करे। और इन सब का फाउंडेशन बाबा ने कहा कौन सी भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना। आज की मुरली में भी है, शकल स्त्री की है परंतु आत्मा को देखो, इसमें मेहनत है। ये महीन बातें हैं, ये ऊंची पढ़ाई है। बाबा ने कहा केवल याद नहीं करो, याद के लिए भी बाबा ने कहा है आज, धैर्य से याद करो, गंभीरता से याद करो, समझ से याद करो। धैर्य, समझ, गंभीरता, केवल ऐसे ही नहीं याद करो, एक्यूरेट याद करना है बाबा ने कहा, इसमें मेहनत है। तो वो जैसे याद है वैसे ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो इसको कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अगर है तो क्या करेंगे? चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, वो क्यों है वो भावना, उसको दबाना नहीं है। उस भावना का अगर दमन कर दिया तो वो तहखाने में जाके बैठ जाएगी, अंदर जहर जमा होगा। उसके ऊपर सोचना है कि इस ईर्ष्या से मुझे क्या क्या नुकसान है, क्यों ये भावना है मेरे अंदर, कैसे मैं ये भावना को परिवर्तन करूं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म बदले की भावनाएं आत्माओं के प्रति, जिन्होंने समय पर हमें सहयोग नहीं दिया, जब हमें मदद की आवश्यकता थी और हमने उनको तब मदद कर की थी जब उनको मदद की आवश्यकता थी, पर जब हमको मदद की आवश्यकता है तो वो मदद नहीं कर रहे, ऐसी आत्माओं के प्रति हमारे मन में सूक्ष्म बदला की भावना, सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म बदला, ये सब जो है ना, इनको परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है, इनका दमन नहीं करना है। दमन कर दोगे तो रहेगी अंदर, इनका स्वरूप बदलना है, सब्लिमेशन। तो बाबा कहते हैं अगर ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है, तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है, हर आत्मा के प्रति, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति। इसका परम धाम में भी हम एक अभ्यास कर सकते कि मैं आत्मा परम धाम में हूं और जितनी संसार में आत्मा है सब इस समय परम धाम में, और सभी आत्माओं के प्रति मेरे अंदर प्रेम की भावना है, सहयोग की भावना है, सद्भावना है, पॉजिटिव भावना है, एक भी निगेटिव नहीं किसी के प्रति भी।
बाबा की भावना है,
बाबा की हरेक के प्रति कैसी भावना है? अगर बाबा को स्टेज पर कोई आकर गालियां देने लगे तो बाबा क्या करेगा? चाहे कोई किसी भी भावना से उसके प्रति सामने जाता है, वो कभी ये देखता है ये सेवाधारी है, ये समर्पित है, ये वीआईपी है, ये वीआईपी नहीं है, ये एक पॉजिटिव रीति का भी है। हम क्या करते हैं, किसी के अहंकार की तृप्ति करते हैं, उसके सामने ये कह के कि ये वीआईपी है। एक तरफ तो गिराते हैं किसी किसी को कि अज्ञानी है, और किसी की अहंकार की तृप्ति इस तरह से करते हैं कि ये वीआईपी है। वीआईपी की ज्यादा सेवा करना, कम वीआईपी की सेवा कम करना। अजमल खान कल की मुरली में था ना, अजमल खान, उसमें एक उदाहरण है उसके जीवन में। वो एक गरीब, कोई एक गरीब व्यक्ति था, उसके बेटे की ट्रीटमेंट कर रहा था, इलाज कर रहा था अजमल खान। उस समय उसे न्योता आया, इन्विटेशन आया कि ये ग्वालियर का महाराजा जो है उसकी पत्नी बीमार है, तो आप पहले उसका इलाज करने चलो। तो अजमल खान ने क्या कहा कि मैं जब तक, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो इसको तो देखने वाला कोई है नहीं, ये बच्चा तो मर जाएगा, इसके लिए मैं नहीं आ सकता। वहां तो उसको बहुत पैसा मिल सकता था, जितने अमीर लोग हैं उनको थोड़ी सी ट्रीटमेंट करो तो बहुत मिल जाता है, और गरीबों को कितना भी करो तो कोई पूछता है? अगर वो बच भी गया तो कोई नाम होगा? कोई नाम नहीं। आदिवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स कम है, वहां कोई नाम की गुंजाइश नहीं है, पर बड़ों की सेवा करने वाले बहुत है, क्योंकि वहां नाम मिलता है। फिर अगर कोई बड़ा ठीक हो गया तो कितना नाम हो जाता है। तो ये अजमल खान, बाबा ने कल क्या कहा, वो क्या करता था, देखते ही नब्ज, देखते ही बीमारी का उसको पता चल जाता था, परखने की शक्ति। और वो कोई बहुत पुराना नहीं है, अभी अभी होके गया है, ब्रह्मा बाबा के आसपास ही उसका जन्म है, 1863 में उसका जन्म है, 1927 में उसकी डेथ है, तो अभी अभी का उदाहरण है। तो हमारे मन में ये भेदभाव भी ना हो कि ये अमीर ये गरीब, ये वीआईपी नहीं, वीआईपी के सामने हम बोलते हैं कि ये वीआईपी है, उससे उनको खुशी होती है। परंतु ये बात भी सूक्ष्म है कि जिनको हम वीआईपी बोल रहे हैं और जिनके अहंकार की हम तृप्ति कर रहे हैं, वो एक दिन ज्ञान में आएगा, और ज्ञान में आने के बाद जब वो पार्टियों के साथ आएगा तो उसको फिर वही वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, फिर उसका अहंकार आहत होगा, उसको चोट होगी। पहले पहले तो बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, और अभी 5 लोगों के साथ सोने के लिए, पहले न्यू डायमंड हाउस और अभी
टेंट में।
कोई पूछने वाला नहीं है, तो हमने वो भी एक डिसर्विस कर दी। हमको उसे यज्ञ के इस तरह से, उसकी इस तरीके से भी सेवा नहीं करनी, मतलब उसको ध्यान रखना है। पर ये बात मैं कह रहा हूं, अपने मौन को शब्द देना, अपने मौन को मुखरित करना, जिसको कहते हैं टू वोकलाइज, और उसको खुश करना एक रीति से। हम उसको इस रीति से खुश कर रहे हैं, बाबा की रीति से नहीं, इस रीति से कि भाई आप वीआईपी हो, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम वीआईपी है। हम जनरल में खाना क्यों खाए, हमारा अलग है किचन, वहां जाएंगे हम, क्योंकि ये लोग हमको वहां लेके गए थे पहली बार, पर जब अगली बार आएंगे तो वहीं नहीं जाएगा वो, कितना दुख हो जाएगा, आहत होगा ना वो। तो बाबा कहते हैं भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। अव्यक्त स्थिति अर्थात अव्यक्त भाव और अव्यक्त भावना, अव्यक्त भाव और भावना अर्थात ये सारे भाव, पॉजिटिव भाव, बेहद में रहना है, ऊंचा रहना है, ऊपर रहना है, अंतर द्वंद में नहीं जाना है, छोटे नीचे अपने अपने आपको ऊपर ही रखना है।
पांच जो भावनाएं है, सद्भावना, हद और बेहद, इतना ही फर्क।
हाँ, ये सब विपरीत भावना है, हद की भावना है, वो एक जाल है, अंतर जाल है, वो एक उसमें आत्मा उलझ जाती है, फंस जाती है, उसमें संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं।
यहाँ सब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स,
ये बहुत ऊंची बात है बाबा जो कह रहे हैं ना, दिस इज ऑल
स्पिरिचुअल।
कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुद्ध भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है, अभी उसमें भी बाबा भेद बता रहे, एक है शुभ भाव भावना, दूसरा है व्यर्थ भाव भावना, तीसरा है साधारण भाव भावना। शुभ भाव, व्यर्थ और तीसरा साधारण, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकते, तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। परिवर्तन करने के लिए बाबा कह रहे हैं, दमन करने के लिए नहीं, ये ध्यान रखने की बात है। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हरेक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है, वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हरेक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं, वही माला में पिरोने के अधिकारी है। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हरेक में, हरेक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यही शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। हरेक भाषण नहीं कर सकता, हर एक स्टेज पे नहीं जा सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि लाखों और हजारों के सामने भाषण करने वाले ऊंच पद पाएंगे। झाड़ू लगाने वाले और हजारों के सामने भाषण करने वाले की सेवा एक ही सेवा है, उसके पीछे भाव कौन सा है काम करने वाला। अगर किसमें अहंकार आ रहा है तो वहां मार्क्स जमा नहीं होंगे। फिर ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो हाँ, दोनों भी नहीं चाहिए, दोनों भी नुकसान करता है। बाबा ने क्योंकि हमें स्वमान दिए, बड़े बड़े स्वमान दिए, तो उसमें हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता, मेरा तो ऐसा ही है, ये इस तरह की हीनता की भावना भी ना हो। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा, इसलिए माला का मन का बन जाएगा। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेषात्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, पॉजिटिव फीलिंग्स धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना, कौन सा उदाहरण? रोज फ्लावर का, गुलाब का खुशबू बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते हो? वह कहेंगे क्या करे, इसकी है ही अशुभ भावना, इसका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? पहले से हमारे लिए निगेटिव सोच के रखते हैं ये लोग। तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तन नहीं कर सकते? और किसको करना है ये परिवर्तन? आबू वालों को। इशारा किसके तरफ दिया बाबा ने? आबू वालों की तरफ। दिव्य अलौकिक रोशनी कहां से फैलेगी, कहां से आ रही है? आबू से ही जाएगी सब जगह। तो ध्यान सबसे ज्यादा आबू वालों को रखना है। यहां से हमने अगर किसी के प्रति निगेटिव, वेस्ट, व्यर्थ, ईर्ष्या, घृणा, बदला ऐसी भावना रखे, तो वही यहां से सारे संसार में जाएगी। इसके लिए हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ, हर भावना श्रेष्ठ। इतनी श्रेष्ठ भावना है कि यहां से हमारे किरणें, हमारे प्रकंपन आबू की पहाड़ियों को चीर कर, समुन्दर को लांग कर, विश्व की कोने कोने में एक एक आत्मा तक पहुंचे और वो आत्मा कहे कि ये अलौकिक रोशनी, ये दिव्य रोशनी कहां से आ रही है? ढूंढेंगे कहां से आ रही है और यहां तक पहुंच जाएंगे ढूंढते ढूंढते। तो यही लक्ष्य बाप समान व्यक्त फरिश्ता बनाने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। लक्ष्य श्रेष्ठ रखना है तो लक्षण स्वतः आएंगे, लक्ष्य लक्षण को खींचेंगे। समझा? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनाना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। क्या कहा? मनाना अर्थात बनना। तो ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है, इसमें चिंतन का विषय है। ये इसमें बहुत सारे निकालो कि ब्राह्मणों की भाषा के क्या क्या सिद्धांत है, कम से कम 10-15 पॉइंट हम निकाल सकते हैं इसमें। आज चिंतन करना, बनना ही है कि सिर्फ मनाना है? तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मन के मणकों को समीप लाए, मन का प्रसिद्ध होगा। माला के मन के अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता, तो यह दो बातें दाने कि दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा हरेक प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजयी माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, आज बोला बाबा ने गुड मॉर्निंग करो सुबह सुबह उठकर। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।